ओम शांति, ओम शांति। बहन एक अनाउंसमेंट करना भूल गई हैं, जो कि मैं कर देती हूँ। आज का जो स्केड्यूल है इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। जैसे अभी सेशन है और 4 बजे से शुरू हुआ था, तो 2 सेशन आपके हो चुके हैं, 2 सेशन और अभी हैं, एक अभी और एक इसके बाद और है। और उसके बाद जो आपका कल्चरल 9 बजे होने वाला था वो 8 बजे होगा, तो आप सीधा 9 बजे ही अब यहाँ से उठेंगे, ठीक है? ओके है? क्या हुआ, घबराहट हुई? घबराहट हुई कि 4 से 9 ज्यादा नहीं हो गया? ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है, एक ही बारी मिल जाएगी छुट्टी। नहीं, कल्चरल तो वैसे भी आपके ऊपर है, आप आना चाहें तो ही आएंगे, बट ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अपने आप को चेक कीजिए, जब ये अनाउंस किया तो टॉपिक के अनुसार अंदर थॉट्स चले या नहीं चले, थॉट्स चले या नहीं चले, कुछ के चले कुछ के नहीं चले। सही बात है, कईयों ने उसको पॉजिटिवली भी लिया कि चलो एक ही बारी छुट्टी मिलेगी हमको, लेकिन कईयों को थोड़ा सा भारी भी लगा। और इसीलिए जो आज का टॉपिक है वो क्या है, कीपिंग काम नो मैटर व्हाट। अपने आप को शांत रखना है, स्थिर रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। पॉसिबल है? पॉसिबल है? हाँ जी या ना जी? प्रेजेंटेशन उधर आ सकती है अजय भाई, उधर कर दीजिए। ओके, तो इस सेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे सामने जब नॉन बीकेस होते हैं, चाहे कॉरपोरेट से रिलेटेड हो चाहे कोई भी हो, तो उनको हम इसके ऊपर क्या बता सकते हैं, कैसे इस टॉपिक को हम क्लियर कर सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहेंगे, अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो अपने आप में थोड़ा सा ये रिजेंबल करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट की तरफ भी, है ना, क्योंकि उसमें भी हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रेस की, केओस की, यही सब बात उसमें भी होती है, तो उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। लेकिन 100% स्ट्रेस मैनेजमेंट आप इसमें नहीं डाल सकते, तो इसको आपको अलग रख करके ही करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कि एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति परेशान था, दुखी था, उसने सोचा कि मेरे को ये संसार में नहीं रहना, मुझे शांति चाहिए अपने जीवन में। तो उसने क्या किया, उस शांति के लिए उसने दुनिया का त्याग किया और निकल गया अपनी नाव पर कि मैं जा रहा हूँ जंगल में, मुझे नहीं रहना अब इस संसार में। वो जा रहा था, अभी नदी में ही था तो उसे बहुत अच्छा महसूस होना शुरू हुआ। उसे लगा हाँ कितनी आनंद आ रहा है, देखो यहाँ पर भी कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो जंगल में तो कितना ही मजा मुझे आने वाला है। ये सोच करके वो बड़ा आनंद ले रहा था, आंखें बंद करके उस पानी की आवाज को महसूस कर रहा था, आनंद ले रहा था उसका। इतनी देर में पीछे से उसकी नाव को ठोकर लगती है। तो जैसी ठोकर लगती है वो थोड़ा हैरान होता है कि यहां पर भी कोई पहुंच गया क्या मुझे परेशान करने वाला। फिर भी वो अपने आप को थोड़ा स्थिर रखता है, आंखें बंद करके फिर कोशिश करता है उसको एंजॉय करने की। इतनी देर में वो अपने आप को स्टेबल कर ही रहा होता है कि पीछे से दोबारा ठोकर लगती है। जब दोबारा लगती है तो वापस अपना वही स्वभाव संस्कार बाहर आ जाता है और पलटता है, कौन है पीछे। जैसे ही पलटता है देखता है कोई भी नहीं है पीछे, और एक नाव जो खाली जा रही थी वो पानी में बह गई थी, तो वो पीछे से आकर के ठोकर मार रही थी उसको। तो उसने सोचा इसने भी मुझे नहीं छोड़ा, खाली नाव ने भी मुझे नहीं छोड़ा, तो अर्थात मैं अगर जंगल तक भी पहुंच जाऊं तो वहां पर भी कोई ना कोई तो सामने चीजें आएंगी ही जो मेरा पेशेंस टेस्ट करेगी, मुझे ऊपर नीचे लेकर के आएगी। कहने का भाव क्या है, कहने का भाव क्या है कि चाहे किसी भी सर्कमस्टांस में हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पर भी चले जाएं, कोई ना कोई परिस्थितियां हमारे सामने आती ही हैं। तो कल जैसे आपको बताया था एनर्जाइजर्स के बारे में, आइस ब्रेकिंग के बारे में, ऐसे ही आप किसी भी सेशन की जब शुरुआत करते हैं तो उसमें आप चाहें तो कोई स्टोरी से शुरू कर सकते हैं। जब आप स्टोरी से शुरू करते हैं तो ज्यादातर लोग अपने आप को उस स्टोरी के साथ कनेक्ट करके थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाती है। सीधा हम ज्ञान पे जाते हैं तो कई बारी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो कोशिश कीजिए, हमेशा जरूरी नहीं है एक ही पैटर्न बनाने की, लेकिन आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं ऐसे भी। तो साइलेंस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, ये हमारे अपने अंदर की बात है, बाहर से तो परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रखती हूं, आप मुझे उसका उत्तर दीजिएगा। मान लीजिए हम सभी इसी हॉल में ही बैठे हुए हैं, लेकिन इस हॉल के जो डोर्स हैं वो ऐसे जाली के या लकड़ी के डोर्स नहीं है, लोहे के दरवाजे हैं। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लोहे के दरवाजे हैं और किसी ने जानबूझ करके वो सारे दरवाजों को बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। ठीक है, इस हॉल का कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की अवेलेबल नहीं है जहां से आप बाहर जा सकें। अब यहां पर ट्रेनिंग चल रही है, बात कर रहे हैं, बात करते करते मेरे पास अचानक से फोन आता है और मैं फोन उठाते ही पूछती हूं, हां जी मैं ट्रेनिंग में हूं, बस इतना ही मैसेज आपको देना था कि इस हॉल में बॉम्ब है जो कि एक मिनट बाद फट जाएगा और ये मैं आपको बताती हूं। अब क्या होगा जी, क्या करेंगे? भागना शुरू करेंगे, मतलब हॉल में गोल गोल भागेंगे, कोशिश करेंगे। कैसे कैसे कोशिश करेंगे? दरवाजे को लोहे से मजबूत तो हम हैं, बाबा के बच्चे हैं हम, क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे, एक मिनट बचा जिंदगी का योगी लगा लें, क्या करेंगे? अंदर बाहर? अंदर जाएंगे। मैं आपको सच बताऊं, बाबा हमको जो अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं ना, वो यही अभ्यास है कि अंत समय हम अंदर जा सकें। लेकिन ऑनेस्टली मेरा तो अभ्यास अभी तक पक्का हुआ नहीं है कि उसी टाइम हम अंदर जा सकें, ये हो नहीं पाता है, एक्चुअली नहीं हो पाता है। तो क्या करेंगे? ये सबसे अच्छा उत्तर था, हम कर भी क्या सकते हैं, अब जो करेगा वो बॉम्ब करेगा। तो हम सभी क्या करेंगे, ऐसे ही सरेंडर होकर के अपनी अपनी चेयर्स पकड़ेंगे, चौकड़ी मारेंगे और बैठ जाएंगे, अब तू फट ले। ऐसा करेंगे? ऐसा करेंगे? हाँ, भले हमें एंड पता हो कि एंड यही है उसका, लेकिन हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? नहीं ना, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अच्छा, एक बार को और सोचिए कि इस हॉल में थोड़े और लोग हों, चलिए इतने भी हों या थोड़े और लोग हों, अब क्या होगा? एक्चुअल क्या होता है, जैसे हमें ऐसी कोई भी सूचना मिलती है, हम क्या करते हैं, सारे एक्चुअली जाएंगे दरवाजे की तरफ, उसको खोलने की, तोड़ने की कोशिश करेंगे, करेंगे है ना, हम सब उसकी तरफ जाना शुरू करेंगे, उसको खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें पता है कि वो तो कुछ होगा नहीं, तो कई लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग तो दरवाजे पे हैं, वो तो खुल नहीं रहा, तो बाकी लोग क्या करेंगे, कोई बॉम्ब ढूंढने की कोशिश भी करेगा, करेगा ना, भाई इस टेबल के नीचे देख लो, इस फ्लावर्स के नीचे देख लो, है ना, कोई कहीं ढूंढेगा, कोई कहीं ढूंढेगा। चलिए बॉम्ब भी मिल गया, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तार काटेंगे, कौन सी, रेड, येलो या ग्रीन? बहन जी कह रही है मैं तार काटूंगी, बहन जी कौन सी तार काटेंगे आप, रेड, येलो या ग्रीन? तीन ही ऑप्शन है, ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको, तीनों एक साथ काटेंगे। मतलब हम एक मिनट भी इंतजार क्यों करें, हम थोड़ा पहले ही चले जाते हैं। अच्छा, जाना तो है ही, तो थोड़ा कोशिश करके जाएं। इस पूरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन में प्रैक्टिकली देखिए, हम सभी भाग रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, बॉम्ब भी ढूंढ रहे हैं, और ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे हम बॉम्ब डिस्पोज करने के एक्सपर्ट्स हों, है ना, ढूंढ भी लिया, अभी हम तार काटना कहने की बात है, इतना आसान नहीं है, अपनी मौत को खुद निमंत्रण देना इतना आसान होता नहीं है. सो इस सिचुएशन में भी अगर देखें तो पूरी तरफ क्या था, पूरी तरफ क्या था, क्योस था, हबड़ा तबड़ी थी, सारी तरफ वही था. तो एक जो समझदार इंसान होगा, जिसने अपने जीवन में इस शांति के गुण को, इस कामनेस को प्रैक्टिस किया होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, या तो वो शांति से बैठेगा या वो दूसरों को भी कहेगा कम से कम शांति से ढूंढो. हम शांति से ढूंढेंगे तो चीज जल्दी मिलेगी, नहीं तो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए पाएंगे एक दूसरे को. एक्चुअली कोई भी उस समय किसी को भी बोले आप बैठ जाओ, नहीं मानेगा वो. क्यों? क्योंकि जब तक आप शांत नहीं हैं, बाहर की सिचुएशन आपके ऊपर हावी रहेगी ही रहेगी. तो उस समय पर भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने आप को स्थिर कर लेना. इसीलिए क्योस की जो हम बात कर रहे हैं कि जो सिचुएशंस आती हैं, ये कहां से आती हैं, अंदर से आती हैं या बाहर से आती हैं, अंदर से आती हैं बाहर से आती हैं. अब इस फोटो को देख करके आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति उस पेपर्स के अंदर है या पेपर्स उस व्यक्ति के ऊपर है, कौन किसके ऊपर हावी हो रहा है, क्योस है ना, किसी भी चीज का हो सकता है. और दूसरी तरफ आप देखेंगे एक महिला बैठ के आराम से फोन पे बात कर रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये फोटो अपने आप में ये दिखा देती है, हम कितने ही परिस्थितियों में क्यों ना हो, कितने ही परेशान क्यों ना हो, हमारे इर्द गिर्द वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता और नहीं पड़ने वाला. हम सोचें हम परेशान हैं, हमें कोई मिल जाए जिसको हम अपना दुखड़ा सुना सकें, आज मिल जाएगा, दो दिन मिल जाएगा, तीसरे दिन वो भी क्या कहेगा, रोज अपना रोना लेके आ जाता है. तो कोई हमें उस रूप से स्वीकार नहीं करता. तो क्योस कहां है, अंदर है या बाहर है, प्रॉब्लम कहां है? जब नॉन बीके से भी पूछेंगे वो भी कहेंगे एक्चुअली अंदर है, लेकिन ठीक कैसे करें ये समझ में नहीं आ रहा. इतना वो भी समझ जाते हैं कि हाँ प्रॉब्लम हमारे अंदर है. अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें, एक वीडियो प्ले कर रही हूं, साउंड दीजिएगा. साउंड दीजिएगा भैया. कोई बात नहीं, आप वीडियो को देखिए, मैं शुरू से प्ले करती हूं इसको. सब व्यक्ति बैठे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं. काम करते हुए एक व्यक्ति ने एक प्रिंटआउट दिया और वो प्रिंटआउट जो है वो ब्लैक कलर का निकला, मतलब उसमें इंक खत्म हो गया जो भी है. वो व्यक्ति आता है, देखता है, दूसरा प्रिंट निकला, कुछ नहीं, खाली. अब देखिए कि कितना इंसान अपने नियंत्रण खो चुका है, उसका ये रिजल्ट है. कोशिश की उसने कि दोबारा प्रिंट आउट देके देखते हैं, थोड़ा तो पेशेंस रखी अपने अंदर, फिर से वही हालत. प्रिंटर खोलता है, देखता है क्या दिक्कत है इस प्रिंटर में, उसका पेशेंस टेस्ट हो रहा है. वापस उस कि इंक का वो जो कार्ट्रिज अंदर डाला, उसकी इंक बाहर निकल के आई. अब चढ़ा असली गुस्सा, ये गया अपनी सीट पर, अब निकाल प्रिंट. देख रहे हैं आप, कंप्यूटर को ही प्रिंटर पे रख करके उसको मार रहा है, अब प्रिंट निकाल. ये सिचुएशन क्यों हुई, ये सिचुएशन क्यों हुई? प्रिंटर की गलती थी ना. जब एक्चुअली लोगों से पूछते तो लोग कहते हैं प्रिंटर की गलती थी, कई लोग कहते हैं आईटी वालों की गलती थी. किसकी गलती थी, किसकी गलती थी? कितना मुश्किल है ना स्वीकार करना. किसकी गलती थी? एक्चुअली सिचुएशन का कारण कौन बन रहा था? कारण कोई भी बन रहा हो, लेकिन इम्पेशियंस जो थी वो मेरी ही थी, मैंने अपने अंदर की शांति को भंग होने दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर इतना प्रेशर था, उसको फोर्स किया जा रहा था, अब भी प्रिंट आउट लेकर के आओ, सब कुछ अब भी करना है, ऊपर से प्रेशर भी आ रहा था। लेकिन अगर प्रिंटर नहीं चल रहा तो उसको कंप्यूटर उसके ऊपर रख करके मारने से अब निकालेगा क्या प्रिंट आउट? उसको फायर जरूर कर दिया जाएगा, कंपनी से जरूर निकाला जाएगा उसको ऐसी हरकत करने पे। तो कहीं ना कहीं जो प्रेशर्स हमारे पास आ रहे हैं वो सॉल्यूशन नहीं दे रहे हमको, उल्टा हमको और ही प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। हमारे सामने कैसी भी सिचुएशन आए, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो अक्सर करके क्या देखा गया, हमारे अपने संबंध भी खराब होते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं, कई बार गुस्से में आके हम कोई चीजें तोड़ देते हैं। ये सब कारण क्या बन रहा है? अपने अंदर की शांति भंग हुई पड़ी है, इसीलिए बाहर से क्योस है। और जब ये क्योस की सिचुएशन होती है तो अंदर से क्या क्या चल रहा होता है? गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, कंफ्यूजन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हेल्पलेस फील करते हैं, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आता, और फियर, एक डर बना रहता है अंदर। ये सब सिचुएशंस क्रिएट हुई क्यों? क्योंकि बाहर की परिस्थितियां मेरे ऊपर हावी हो रही हैं और मेरे अंदर अब ये सब चीजें ट्रिगर हो रही हैं। इनमें से कुछ ना कुछ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन मेरे अंदर ट्रिगर हो रहा है अब। तो ये जब तक ट्रिगर होता रहेगा, इनमें से कोई भी सिचुएशन का परिणाम, ये कोई भी चीज जब तक मेरे ऊपर हावी होती रहेगी तब तक प्रॉब्लम बनी ही रहेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने आज प्लान किया कि आज आप बाहर जाएंगे, ठीक है? आपने प्लान किया, बाहर गए, रास्ते में हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में हैं, इतनी देर में सामने से एक व्यक्ति आता है, आपके गाड़ी को ठोकता है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक नॉन बीके की तरह बताइए, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? सॉरी, उसको बाहर निकल के थोड़ा ठीक करेंगे। अच्छा, गाड़ी को या व्यक्ति को? अच्छा, व्यक्ति को ठीक करेंगे। जनरली इस तरह के सिचुएशन में क्या करते हैं, हम बाहर निकलते हैं, कुछ दो चार बातें सुना देते हैं, है ना, कुछ कई बड़ी पैसे मांग लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं उस सिचुएशन में, कुछ मिले ना मिले भड़ास को निकाल ही देते हैं। अब अगले दिन आप वापस निकलते हैं, वापस उसी रोड से जा रहे हैं, आज उसी स्थान पर जहां कल एक्सीडेंट हुआ था, आज उसी स्थान पर आपके सामने भैंस आ जाता है और उससे आपका एक्सीडेंट होता है, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? सिर्फ हंसेंगे? बोलेंगे उसको, भाई पैसे निकाल, ओ भैंसे पैसे निकाल, बोलेंगे? क्या करेंगे? उसको जाके सुना के आएंगे दो चार खरी खोटी? और अगर सच में मानो, एक बारी को मान के देखिए, अगर उसको सुनाने चलेगा और कोई पड़ोसी देख रहा हो तो वो क्या कहेगा, इसे हुआ क्या है? वहां क्या कहा जाएगा, ये मूर्ख है जो जाकर के एक भैंस को सुना रहा है, राइट? वहीं अगर कोई इंसान से हो जाए तो हम उसको छोड़ते नहीं है। एक्चुअली बाहर की सिचुएशंस हावी हो रही हैं क्योंकि हम उसको हावी होने दे रहे हैं। एक बार ऐसे ही कुछ हुआ, गाड़ी में जा रहे थे, सामने से किसी ने आकर के गाड़ी को एकदम से रोक दिया, तो हमारी गाड़ी उसको टकराते टकराते बच गई। जैसे ही बची, पीछे वाले ने तो ठोक ही दिया। अब उसने ठोका तो आया गुस्से में, वो साइड मिरर पे हम देख रहे थे, भड़कता हुआ आ रहा है, अभी आके चार पांच सुनाएगा हमको। जैसे ही आया, उसने देखा बहनें बैठी हैं, चला गया। अब इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ बताइए क्या था? बहनों में या उसमें? उस व्यक्ति में कंट्रोल करने की पावर है, राइट? यही कोई इंसान होता, कोई भाई होता तो वो सब कुछ करता, जो उसको करना था वो एक्चुअली सब कुछ करता था जिस गुस्से से वो आ रहा था। लेकिन बहने देखते ही उसने क्या किया? कोई फायदा नहीं है, अब यहां फायदा किस किस बात का नहीं है, इनको बोलूंगा तो भी मानेंगी नहीं, पहली बात तो ये, बोलूंगा तो मानेंगी नहीं, उल्टा कहीं हमें ना सुना दें। हो सकता है घर वालों ने ये सिखाया हो कि महिलाओं की रिस्पेक्ट करो चाहे वो कुछ भी करें, बहुत सारी बातें हो सकती हैं पीछे। लेकिन हम दूसरी तरफ क्या कहते हैं खुद को कि अगर मुझे गुस्सा चढ़ जाए ना तो जब तक मैं निकाल ना दूं रुका नहीं जाता, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। बोल देते हैं ना कहीं पर ऐसा, हम ना बोले बाहर वाले तो बोल ही देते हैं, होता है या नहीं होता? हम क्या कहते हैं, मेरा गुस्सा अभी आपने देखा नहीं है किस पीक पर जाता है, ऐसे ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं, हम बोलते हैं ऐसे ऐसे शब्द कई बार। तो जब वो हम कह रहे हैं कि वो पीक पर जाने के बाद ही शांत होता है, अब कैसे शांत हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं पॉज बटन हमारे पास था ना, था ना? बहन देखते ही उसको वो सारे पॉज बटन एक साथ याद आ गए। तो वो पॉज बटन एक्चुअली हम सबके पास भी हैं, बस अंतर इतना है कि उस समय पर हमें वो चीज याद नहीं आ रही जो हम उसको ठीक कर सके, अपने आप को रोक सके, और वो हमारी जो शांति, जो मन की स्थिति है वो भंग ना हो, उसको हम रोक सके। ये तरह के एग्जाम्पल आप नॉर्मल एग्जाम्पल हैं, कार रिलेटेड, रोड रिलेटेड एग्जाम्पल्स, ट्रैफिक रिलेटेड एग्जाम्पल, ये आप उनको आराम से दे सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप उनको बता सकते हैं कि ये सब चीजें हमारे साथ घटित होती हैं। लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी इंसान क्या कहता है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये क्या है, नॉर्मल है। बोलते हैं नॉर्मल है, मैं इंसान हूं, गुस्सा तो आएगा ना, मैं इंसान हूं, अब ये मेरे को बोलेगा तो मैं तो सुनाऊंगा ना, बोलते हैं ना, जब मैं मेरी परिस्थिति पर आकर के देखो तब पता चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हमने उसको जस्टिफाई कर दिया है कि मैं जिस सिचुएशन में काम कर रहा हूं, जिन परिस्थितियों में रह रहा हूं, वहां पर ये सब कुछ होना नॉर्मल है। और जब तक हम ये समझ रहे हैं ये नॉर्मल है, तब तक क्या होगा, तब तक क्या होगा, होता रहेगा या नहीं होगा? तब तक कंटिन्यूएशन में वही होता रहेगा, टिल द डेट आई डिसाइड कि अब मुझे ये चीज के ऊपर एक्शन लेना है, मुझे ये नहीं करना है। हम में से कितने हैं जिन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया था? न्यू ईयर रेजोल्यूशन सोचते हैं ना, इस साल ये करूंगी। कौन कौन है, हाथ खड़ा करना, मैं पूछूंगी नहीं किसी से, डोंट वरी। लिया था? कुछ नहीं लिया था, सबने नहीं लिया। अच्छा, अब इनमें से कौन कौन है जिनको वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन याद है? दो चार हाथ रह गए। अच्छा, अब इनमें से कौन कौन है जिन्होंने उस रेजोल्यूशन को किया है, भले 100% ना हुआ हो, तीन चार बस, और कम हो गए हाथ। प्रैक्टिकली देख लिया, यही बाहर वालों के साथ हो रहा है और यही एक्चुअली हमारे साथ भी हो रहा है। हम हर साल सोच रहे हैं, हर बार सोच रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस ना हम कर पाते हैं, और बाहर वाले तो भूल ही जाइए, और क्योंकि वो हम कंटिन्यूस अपने आप को रिमाइंडर्स नहीं दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वही चीज बार 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 हमारे ऊपर हावी हो रही है। और हम क्या कहते हैं, ये तो नॉर्मल, अब ये तो होगा ही ना मेरे साथ। नहीं, इट्स नॉट नॉर्मल। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि क्या हम किसी भी जब सिचुएशन में हैं, तो सिचुएशन में होते हुए क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो हमें ये गारंटी दे सके, क्या कोई भी ऐसी जॉब है जो हमें गारंटी दे सके कि आपके सामने सिचुएशन नहीं आएगी? इज देयर एनीथिंग? आप किसी भी जॉब में जाइए, मैं हमेशा कई बार लोगों को कहती हूं, हम सबके सामने मोस्ट ऑफ द टाइम्स दो ऑप्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें जॉब करनी है या नहीं करनी है, ये ऑप्शन किसका है, ऑप्शन किसका है, जवाब तो दे दीजिए, हमारा ही है। मुझे करना है या नहीं करना है जॉब, ये ऑप्शन मेरा है। मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना था या नहीं बनना था, ये ऑप्शन किसके पास था, मेरे पास। आज मुझे पुरुषार्थ करना है या सोते रहना, ये ऑप्शन किसके पास है। एक्चुअली हम सबके पास दो ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम उसमें से उसको अवेल नहीं करते उस ऑप्शन को, और हम क्या सोचते हैं, ये वाला ही चल रहा है, मेरी मजबूरी थी। जॉब पर कोई गारंटी देकर के, कोई लिखित में देकर के नहीं रखता कि तुम्हारी जॉब लग गई है, अब तुम्हारी जिंदगी शांति से बीतेगी। जॉब लगते इंसान क्या कहता है, मेरे को ना जॉब तो करनी थी लेकिन ये वाली नहीं करनी थी. अच्छा, वो वाली जॉब मिल जाए तो क्या कहते हैं, मुझे काम तो करना था, इसी कंपनी में करना था, यही करना था, लेकिन डिपार्टमेंट ये नहीं चाहिए था. कभी संतुष्ट होंगे? पत्नी तो चाहिए थी लेकिन ये वाली नहीं चाहिए थी. आ गया जवाब, मुझे पत्नी तो चाहिए थी, ये वाली नहीं चाहिए थी. बच्चों के लिए नहीं बोलते लेकिन पत्नी के लिए बोल देते हैं, ये वाली नहीं चाहिए थी. पति के लिए बोल देते हैं, ये वाला नहीं चाहिए था. हम हमेशा ही क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं कि हम किसी पर ब्लेम डाल दें, किसी के ऊपर कर दें, ये नहीं चाहिए था, बाकी तो सब ठीक है. कभी किसी डॉक्टर के पास गए हो, उसने आपसे वो जरूर लिखवाएगा कि अगर इसको कुछ हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है, आपसे जरूर लिखवाएगा. कभी उसने लिख के दिया कि मैं इस पेशेंट को ले रहा हूं और गारंटी देता हूं इसको कुछ नहीं होगा? कभी लिख के दिया? नहीं. कभी कोई भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, बिजनेसमैन के पास चले जाइए, कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना हो, कब फ्लॉप हो जाएगा कुछ पता नहीं. हर एक सेक्टर पर आप चले जाइए, पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के पास चले जाइए, वो भी गारंटी नहीं दे रहा. आज के समय पर तो प्रकृति भी गारंटी नहीं दे रही. कोई भी चीज जितनी भी हमारे इर्द गिर्द है उसमें से किसी की भी हम गारंटी नहीं ले पाएंगे कि ये व्यक्ति, ये चीज, ये सिचुएशन, ये चीज मेरे अनुसार चलने वाली है. कोई भी चीज हो सकती है. अब मैं अगर इस फ्लावर पॉट को लेकर के यहां नीचे रख दूं और ये यहीं रहे, ये नीचे ही रहे, क्या होगा? थोड़ी देर बाद संकल्प चलने शुरू होंगे. इसको नीचे रखा क्यों? इसको नीचे रखा ही क्यों? दीदी आप थोड़ा ठीक से बैठिए ना. कैसे बैठे हैं आप भी कैसे बैठे, कैसे हैं? समझ गए. उनको देख करके कईयों के पैर अपने आप नीचे हो गए. क्या किया? मैं एक सिचुएशन बन के आई, आपको हिलाया और वापस आ गई. अब अगर मैं इसको हंसी में ना उड़ाऊं तो एक घंटा सेशन तो सुनाई नहीं देगा. क्या सुनाई देगा? मुझे टोक दिया 400-500 लोगों के सामने. वही याद आता रहेगा, वही चलता रहेगा. तो हमें डिस्टर्ब करने के लिए, हमें अपनी स्थिति से हटाने के लिए एक्चुअली बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए जो हम लोगों को सुनाते आ रहे हैं. एक्चुअली हमारे साथ भी हमें बड़ी बातें चाहिए ही नहीं हिलाने के लिए. ये छोटी सी चीज की पैर नीचे कर लो, यही चीज हमको हिला सकती है. हिला सकती है या नहीं? हिला सकती है नहीं? बहुत छोटी छोटी बातें हमको हिला जाती हैं. इसलिए गारंटी किसी की नहीं कर सकते. व्हेन वी आर प्रिपेयर्ड इंटरनली, जब हम अंदर से तैयार होते हैं किसी भी सिचुएशन, सर्कमस्टांस, किसी भी चीज के लिए जब हम अंदर से तैयार होते हैं तो हमें फिर भी क्योस कम होता है. अभी किसी रास्ते से आप गुजरते हो, आपको पता है कि रोज इस रास्ते पर ट्रैफिक होता है, तो क्या होगा? जैसे ही पहुंचे ट्रैफिक है, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे वहां पर? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, म्यूजिक चला के आराम से सीट पीछे करके बैठ जाते हैं क्योंकि उनको पता है अब ये ट्रैफिक आसानी से खुलने वाला नहीं है. यहां तक कि कितने लोग ऐसे भी देखे हैं मैंने, रास्ते में ही वो ड्राइव कर रहे हैं, हल्की हल्की गाड़ी हिलती रहती है, वो हल्की हल्की गाड़ी हिल रही है, हल्का हल्का ड्राइव कर रहे हैं, टिफिन खोला, नाश्ता चल रहा है और जैसे पूरा हुआ साइड पर रखा, वापस गाड़ी ड्राइव करना शुरू. तो सारे काम कहां हो जाते हैं? कार में ही हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो मेंटली तैयार थे उस चीज के लिए. जब हमें मेंटली पता होता है ये सिचुएशन आने वाली है तो हम उसको हैंडल कर लेते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां बेवजह आती हैं तो हम उसके लिए तैयार नहीं होते. एक छोटा सा उदाहरण, आपने अपने सेंटर से दो बहनों को, एक थोड़ी सीनियर एक जूनियर, दो बहनों को आपने बाहर भेजा शॉपिंग के लिए और लिस्ट दे करके भेजा, ये सामान लेकर के आना, और पैसे दे करके भेजा. पैसे थोड़े ज्यादा ही दिए कि भाई कुछ जरूरत पड़ सकती है एक्स्ट्रा ही लेकर के जाओ। 10,000 रुपए देकर के बहनों को भेज दिया। अब बहनें जाती हैं, पूरा शॉपिंग वॉपिंग करके आती हैं, 2-2.5 घंटे लगा करके आती हैं। जैसे ही सेंटर वापस पहुंचती हैं, जो थोड़ी सीनियर बहन थी वो फ्रेश होने चली जाती है, पानी पीने वॉशरूम जाती है, और छोटी बहन सारा पिटारा लेकर के सामने बैठ जाती है आपके और खोल के दिखाने लगती है। अब जब वो दिखाती है आपको तो आपको दिखाई देता है, ये तो मैंने लिस्ट में सामान लिखा ही नहीं था, ये तो मैंने लिस्ट में लिखा ही नहीं था, ये भी निकल रहा है, वो भी निकल रहा है, ये बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान निकलता जा रहा है। और आप पूछते हैं उससे, बहन ये मैंने कहा कहा था आपको लेने के लिए, ये क्यों लिया आपने? दीदी पता नहीं, वो तो दीदी ने लिया, और दीदी तो आई नहीं अभी तक। वो दिखाई जा रही है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो निकालती जा रही है ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, कितना खर्चा हुआ? दीदी पता नहीं, बिल दिखा, दीदी वो भी मेरे पास नहीं है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि वो आए और दिखाए किया क्या है उसने। अब वो बहन आती है और हम भी क्या करते हैं, तब तक वो 5-7-10 मिनट जो था तब तक हमारा पारा थोड़ा सा बढ़ चुका होता है। जैसे आती है, किसने बोला था इतना सारा सामान लाने के लिए, ये सब सामान की जरूरत थी क्या? सेंटर पे ही तो पड़ा था, इतने सारे सामान का करेंगे क्या? ये खराब हो जाएगा तो क्या होगा? हमने बोलना शुरू किया। वो इससे पहले कुछ बोल पाए बहुत कुछ सुन लिया, और सुनने के बाद वो फाइनली बोलती है, दीदी ये सब फ्री में आया है। रास्ते में वो भाई का फोन आया था, उसने कहा सेंटर के लिए जितना सामान लेना है ले लेना, तो मैंने ले लिया, ये सब फ्री में आया, उसी ने बिल पे किया है। और वो सुनते दीदी कहती, अच्छा अब क्या हुआ? सिचुएशन कैसी थी और कैसी हो गई? कैसी थी? मुश्किलों भरी थी कि पूरे 10,000 रुपए खत्म हो चुका होगा, शायद उधार पे ना लेकर आई हो अब तो। लेकिन जैसे ही एक शब्द सुना फ्री, तो सिचुएशन आई और एकदम से चली भी गई। लेकिन उस देर में हमने क्या किया, अपने आप को कितना डिस्टर्ब किया, कितना परेशान किया हमने अपने आप को, ये हम सोच ही नहीं पा रहे। अब वो डिस्टर्बेंस डिपेंड करता है कितने दिन तक चलती है। ये तो चलो छोटी सी बात थी, लेकिन कई बारी कोई डिस्टर्बेंस होती है जिसको हम तुरंत खत्म भी कर देते हैं, और कई बारी कोई ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जिसको हम घसीटते हैं अपने साथ। कितने दिन तक? कितने दिन तक डिपेंड करता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, कई बार महीना भी, कितने दिन घसीटना है वो हमारे ऊपर है। लेकिन 2-4-10 दिन बाद भी फाइनली क्या सोचते हैं, छोड़ो परे, क्या सोचना इनके बारे में, 10 दिन बाद भी छोड़ा ना, तो 10 दिन बाद छोड़ने की ताकत आई तो पहले दिन छोड़ने की ताकत क्यों नहीं आई? ये आप लोगों को पूरा समझा सकते हैं अच्छे से कि 10 दिन बाद जो ताकत आई वो पहले दिन ताकत क्यों नहीं? क्या हुआ, क्या लगा? उस पर तो असर हो नहीं रहा, तो फिर भी हंस रहे हैं, मैं परेशान क्यों हूं? छोड़ो। तो छोड़ना घसीटना भी हमें ही आता है, तो जब छोड़ना आता है तो पहले क्यों ना छोड़े? घसीटने के बाद छोड़ा तो खुद को परेशान करके छोड़ा ना, फायदा नहीं है उस चीज का, इसीलिए छोड़ना बेटर है। प्रॉब्लम्स जो है वो प्रैक्टिकली देखें हमें बाहर दिख रही हैं, लेकिन अंदर से कैसा होना चाहिए? एसी जैसा। अभी कोई ऑफिस में काम करता हो, अच्छा खासा कॉरपोरेट ऑफिस हो उसका, आप उसको जाकर के अंदर, जैसे ही ऑफिस में घुसते हैं अंदर जाकर के उनको बोलिए दोपहर के टाइम, भाई बाहर बहुत गर्मी है, वो कहेगा कहाँ गर्मी है, क्यों? क्योंकि वो कहाँ बैठा है, एसी में बैठा है, उसको गर्मी बारिश चीजों का असर ही नहीं हो रहा। हम सर्दी में किसी ऑफिस में जाएं, हम पहन पहन के जा रहे, अंदर जाके देखते हैं एक शर्ट पैंट में बैठा हुआ बंदा, क्योंकि ना उसको किसी बात का असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसका एनवायरमेंट वैसा ही बन गया है। जब बाहर का एनवायरमेंट वैसा बन सकता है, एक्चुअली हमें यहां पर एसी लगाने की जरूरत है। यहां से ठंडे रहेंगे तो बाहर की सिचुएशन असर नहीं कर पाएगी, चाहे फिर कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। एक और आपको बहुत अच्छी वीडियो दिखाती हूं। ये भी व्यक्ति कंप्यूटर पे काम कर रहा है ऑफिस में, और करते करते या तो कंप्यूटर ने वर्क करना बंद किया, क्या हुआ, चढ़ा गुस्सा, चलो भाई दोबारा देखेंगे, मजेदार है ना। उसको लगा सामने वाला कुछ हमदर्दी दिखाएगा, कुछ सांत्वना देगा, लेकिन हुआ क्या, उसने कहा अपनी प्रॉब्लम अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए। बहुत सिंपल बात है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कितने ही परेशान होते रहें, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। इसीलिए अपने आप को हम चेक करें और इसका उत्तर हम खुद ही को दें कि जब हमारे सामने सिचुएशन, परिस्थितियां, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, क्या हम उस परिस्थिति से भागते हैं? अपने आप को चेक कीजिएगा, उत्तर नहीं चाहिए। क्या हम उस परिस्थिति से भागते हैं, क्या हम उस परिस्थिति का सामना करते हैं, या क्या हम उस परिस्थिति को एंजॉय करते हैं? तीनों ही कंडीशंस जो हैं उसका कंट्रोल किसके पास है, किसके पास है? हम बहनें क्लासेस में एग्जांपल सुनाती हैं रिमोट कंट्रोल वाला, कि हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास है, सामने वाले के पास है। आज जरा हम अपने लिए भी एक बारी चेक कर लें कि जब परिस्थिति आई तो उस समय पर मैं उस परिस्थिति से बटन दबा के भाग तो नहीं गई हूं, क्या मैं उस परिस्थिति का सामना कर रही हूं या मैं उस परिस्थिति को भी इंजॉय कर रही हूं। ये बड़ी बात नहीं है कि चलो डिस्टर्ब हुए भी, बट इंपॉर्टेंट ये कितनी जल्दी उस बात से बाहर निकल आए। हुए डिस्टर्ब ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर कितनी जल्दी निकले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज को आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो परिस्थितियां अंदर की तरफ ज्यादा आती हैं, अंदर ही हमको चोट पहुंचाती हैं, तो ट्रिगर भी किसको करना करती है, अंदर। तो हीलिंग भी कहां करनी है, अंदर। ऐसे ही एक वुड कटर था, उसकी जॉब लगी एक सेठ के पास, और जब वो सेठ के पास पहुंचता है तो सेठ को कहता है कि मैं इस नौकरी पर अच्छी तरह से काम कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने नया नया जंगल खरीदा होता है, वो कहता है ठीक है तुम पेड़ काटने की तुम्हारे को मैं काम देता हूं और अच्छी खासी सैलरी दूंगा। वो खुश हो जाता है, पहले दिन पहुंचता है अपनी कुल्हाड़ी लेकर के और पेड़ काटता है। पूरा दिन पेड़ काटने के बाद 15 पेड़ काटता है और उन पेड़ों को काटने के बाद खुशी खुशी जाता है अपने मालिक के पास और उसको बताता है आज मैंने 15 पेड़ काटे। उसका जो मालिक था उसको बड़ी शाबाशी देता है, बहुत बढ़िया, ऐसे तो तुम बड़ी जल्दी जंगल साफ कर दोगे। अगले दिन बड़ी खुशी और उमंग उत्साह से वापस पहुंचता है। अब कल सुबह 7 बजे आया था और शाम को 5 बजे तक काटा था, आज भी सुबह 7 बजे पहुंचता है लेकिन 6 बजे तक पेड़ काटा, 1 घंटा और एक्स्ट्रा पेड़ काटा कि मैं अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दूं। और जब लास्ट में गिनता है तो उसने 10 ही पेड़ काटे होते हैं। बड़ा परेशान हैरान होता है कि मैंने आज टाइम ज्यादा दिया, खाना लंच ब्रेक भी नहीं किया, उसके बाद भी मेरी परफॉर्मेंस कम कैसे हुई, 10 पेड़ कैसे कटे। वापस थोड़ा निराश होकर के जाता है और अपने मालिक को बताता है कि आज मैं 10 ही पेड़ काट पाया। तो मालिक कहता चलो कोई बात नहीं, कल उसको कॉम्पेंसिएट कर देना, कल ज्यादा काट लेना। अब वो अगले दिन फिर जाता है, तीसरे दिन। अब सुबह 5 बजे पहुंच जाते क्योंकि उसको अपना टाइम कवर अप भी करना था, तो 5 बजे सुबह पहुंचता है, कोई लंच ब्रेक नहीं करता, शाम को 6 नहीं लेकिन 7 बजे तक पेड़ काटता है और देखता है केवल 7 ही पेड़ काट पाया था। बड़ा परेशान होकर के मालिक के पास जाता है और कहता है मालिक सिर्फ 7 ही पेड़ काट पाया हूं। मालिक कहता है ऐसा क्यों हुआ? वो कहता है मैंने खाना नहीं खाया, मैंने आराम नहीं किया, मैंने टाइम भी ज्यादा दिया, सब कुछ किया लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस कम होती गई। क्यों? जवाब हमारे को पता है क्यों, क्योंकि उसने कुल्हाड़ी को शार्पन नहीं किया। इसका अर्थ क्या है, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सब कुछ करते हुए जो खुद को समय देने की जरूरत है वो शायद हम कम कर देते हैं, नहीं दे पाते हैं खुद को समय। तो जब तक हमारी कुल्हाड़ी शार्पन नहीं होगी तब तक वो परिस्थितियां बनी ही रहेंगी, वो खत्म नहीं होंगी। फिर हम चाहे कितना ही कहते रहें कि मेरे साथ ही क्यों, वो हमेशा ही रहेगा, मेरे साथ ही होगा, और फिर भी यही बोलेंगे मेरे साथ ही क्यों। तो वो परिस्थितियां खत्म करना हमारे ही हाथ में है। तो अब देखते हैं कि क्या करें जो हम अपने अंदर इस चीज को वापस ला सकें, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बहुत सिंपल चार टिप्स आपके सामने लाए हैं। पहली बात ये, कभी भी रोने के लिए कंधा मत ढूंढिए। हम क्या करते हैं, कंधा ढूंढते रहते हैं। आज कुछ मेरे सामने परिस्थिति आई, मैं इनके पास जाती हूं और बोलती हूं कि मेरे सामने ये परिस्थिति है, और सामने वाला क्या कहता है, अरे इतनी सी बात पे इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। और हम सुन करके आ जाते हैं और को कर लेते हैं और हो भी जाता है। कल क्या होता है, वो व्यक्ति प्रॉब्लम में होता है और वो हमारे पास आता है और हमारा भी सेम ही रिएक्शन होता है, अरे इतनी सी बात को इतना क्यों सोच रहे हो, इसका तो सॉल्यूशन है ना। इसका मतलब क्या कहें, मेरी परिस्थिति का सॉल्यूशन आपके पास है और आपकी परिस्थिति का सॉल्यूशन मेरे पास है। इज इट सो, ऐसा है, ऐसा है। और कई बार आपने सुना होगा, हमारे मुख से निकल भी जाता है कि अरे हाँ मैं भी यही सोच रही थी करने का, बस आपने बोल दिया ना, जिसका मतलब मैं ठीक सोच रही थी। मतलब अपनी सोच पर विश्वास नहीं है, किस पर है, सामने वाले की सोच पर विश्वास है। इसका मतलब हमने अपने लिए डिपेंडेंसी, अंडरलाइन करिएगा, हमने अपने लिए डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है। एवरी टाइम वी आर डिपेंडेंट, ये व्यक्ति मुझे चाहिए अपनी बात सुनाने के लिए, सॉल्यूशन के लिए। हर वक्त हम सरल शब्दों में कहें तो कंधा ढूंढ रहे हैं, हम ब्राह्मण भी। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी, और जब तक कंधा ढूंढते रहेंगे तो सॉल्यूशन भी दूसरों से ही मांगते रहेंगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी जरूरत है, वो है लेट बी, लेट बी व्हाट अदर्स से। एक गाना बना हुआ है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, क्या है, लोगों का काम है कहना, गाना आता है, करना भी आता है ना। लोगों को ऐसे बोल सकते हैं आप कि हमें ये गाना आता है लेकिन हम करते नहीं हैं उस चीज को। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हम कुछ भी करेंगे लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। तो हम उसके ऊपर ना ध्यान देते हुए हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें, चेक करें, और जो हमें लगता है कि हाँ ये ठीक है, वही कदम हमें उठाना है। सो लेट बी व्हाट अदर्स से, कहने दीजिए जिसको जो कहना है। थर्ड इज लेट गो। क्या लेट गो, जाने दीजिए। क्या जाने दें, क्या जाने दें। एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, आप में से कोई एक बहन सामने आ जाए, जो हर वक्त आती रहती हैं वो नहीं, कोई एक नई बहन आ जाइए। आपको कुछ नहीं होगा यहां पे, सही सलामत नीचे जाएंगे आप, कोई एक बहन आ जाइए। अच्छा आप आ रहे हैं, आइए, आ रही है, वो आ रही है, बहन जी बैठो, अभी टाइम निकल गया। भैया हमें आपकी चेयर मिल सकती है, दे दीजिए जरा। वहीं रखिए, वहीं रखिए बहना, आते हुए ना ये चेयर लेते हुए आ जाओ। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप ऑल द वे पीछे से उठ करके आए, बैठने को नहीं कहा मैंने आपको, आप पीछे से ऑल द वे उठ करके आए, आपका थैंक यू। सो आप अवार्ड के पात्र हैं। सो ये चेयर आपकी हुई, इस चेयर को उठा लीजिए, उठा लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपने इस चेयर को उठा पाए, इसीलिए अब आपके लिए ये भी है, आपको इस पर रखना नहीं है, पकड़ना है। हाँ, क्योंकि इनका सच में, इनमें बहुत हिम्मत है, इनकी परफॉर्मेंस सदा से ही अप्रिशिएट की जाती है, इसलिए इनको ये पानी से भरा हुआ ग्लास दे दिया जाता है। ओके, क्योंकि ये बहुत ही मजबूत इंसान है, पकड़िए।
नहीं पकड़ सकते,
नहीं पकड़ पाएंगे। थैंक यू सो मच, रखिए आराम से। बड़े हिम्मत से कह रहे थे पकड़ लूंगी मैं। सिंपल सी चीज आपने देखी, हमने क्या किया, लेट गो नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को पकड़ते जा रहे हैं, पकड़ते जा रहे हैं, चाहे हम उसको हैंडल कर पाएं या ना कर पाएं, हम उसको पकड़ते जा रहे हैं। और जितना हम पकड़ रहे हैं, कौन परेशान हो रहा है, हम ही परेशान हो रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ये पॉइंटर है मेरे हाथ में, मुझे पॉइंटर बहुत पसंद आया, भैया मैं ये लेके जाऊंगी अपने साथ। अब क्योंकि ये मुझे पॉइंटर बहुत पसंद आया तो मैंने इसको होल्ड कर लिया है कि भैया आके मेरे से छीन ना लें, तो मैंने इसको होल्ड कर लिया है। अब कब तक होल्ड करके रखूंगी, कब तक, कितना वजन होगा इसका, 10 ग्राम, आई थिंक 10 ग्राम होगा इसका वेट। कितनी देर पकड़ूंगी, पकड़ पाऊंगी? और क्योंकि भैया आ रहे हैं इसको लेने, तो मैं इसको क्या करूंगी, और मजबूती से पकड़ूंगी अब। और जितना टाइट पकड़ूंगी उतना क्या होगा, हाथ दर्द होगा। आखिरकार क्या होगा, एक टाइम आएगा जब ये हाथ से छूटेगा, और जब ये छूटेगा इट विल रियली गिव मी पेन। जितना हाथ में दर्द हो रहा था ना, उससे ज्यादा दर्द यहां होने वाला है, क्योंकि वो छूटा। तो पहले ही अगर हम चीजों को जाने दें, बातों को जाने दें, तो वो हमारे ऊपर कभी हावी नहीं होंगे, हमें भारी नहीं करेंगी वो, लेकिन हम उसको पकड़ के ना रखें कभी भी। एंड द लास्ट थिंग इज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। हमारे सामने जो बातें आती हैं, चीजें आती हैं, उससे हम सीखें और आगे बढ़ें। एक लास्ट स्टोरी के साथ इसको एंड करती हूं। आप सभी ने नकलची बंदर वाली कहानी सुनी, सुनी? जब हम लोग छोटे थे, 6th 7th क्लास में थे आई थिंक, तब एक स्टोरी आती थी नकलची बंदर वाली, जो मैं सुना देती हूं आपको। ये स्टोरी कुछ इस तरह की थी कि एक व्यक्ति था, टोपी बेचा करता था, और टोपी बेचते हुए उसको हर रोज एक जंगल से गुजरना पड़ता था। तो वो उस दिन भी जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में एक पेड़ की छाया दिखती है, उसके नीचे बैठ जाता है, आंख लग जाती है। जब आंख लगती है, आंख खुलती है, देखता है कोई टोपी नहीं है उसकी वहां पर, और सारे बंदर इर्द गिर्द जो होते हैं वो टोपी लगा करके पेड़ों पर बैठ जाते हैं। तो जब वो ये देखता है तो बड़ा परेशान होता है, मैं क्या करूं, तो सोचता है क्या करूं, पत्थर मारता है, ये करता है, कुछ नहीं होता, कोई बंदर टोपी नहीं देता उसको। उसने कहीं से सुना था कि बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं, तो वो क्या करता है, वहां पर ना पत्थर रखे होते हैं, तो पत्थर से ऐसे धरती को ऐसे स्क्रैच करने लगता है, तो बंदर भी ऊपर जो उनको मिलता है वो लकड़ी को, पेड़ों को स्क्रैच करने लगते हैं। वो ऊपर से, वो नीचे से बैठ करके अपने आप को खुजाने लगता है, तो बंदर ऊपर खुजाने लगते हैं। वो ऐसे ऐसे करता है तो बंदर भी ऐसे ऐसे, जो करता है बंदर रिपीट करते रहते हैं। आखिरकार में वो बंदर अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकता है, बंदर भी टोपी फेंकता है, वो इकट्ठा करता है और चला जाता है। ये स्टोरी थी जो बुक्स में आती थी। अब इसका एडवांस वर्जन, ठीक है, एडवांस वर्जन। अब क्या हुआ, क्योंकि ये उनका पुश्तैनी काम होता है, तो वो व्यक्ति तो बूढ़ा हो गया, अब उसका पोता भी टोपियां ही बेचा करता है, सेम जंगल से गुजरता है, बाय चांस उसी पेड़ के नीचे बैठता है, आंख लग जाती है, आंख खुलती है, सेम सिचुएशन, एक भी टोपी नहीं है, सब बंदर टोपियां लगा करके बैठे हुए हैं। अब उसको भी वही कहानी याद आती है, मेरे दादाजी ने सुनाया था मुझे, वो भी वही करता है, स्क्रैच करता है, खुजाता है, जो भी करता है बंदर रिपीट करते जाते हैं। फाइनली वो भी क्या करता है, अपनी टोपी उतार के नीचे फेंकता है। जैसे ही वो फेंकता है, देखता है किसी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी। वो कहता है ये क्या हुआ। इतनी देर में वो समझ पाता, एक बंदर नीचे उतर के आता है और उस व्यक्ति के जोर के चांटा लगाता है, और चांटा लगा के कहता है, कहानी सुनाना क्या केवल तुम्हारे दादाजी जानते हैं, हमारे दादाजी ने भी स्टोरी हमको सुनाई थी, तो जो गलती उन्होंने की थी वो हम नहीं करेंगे। सो वी शुड लर्न फ्रॉम दी एक्सपीरियंसेस। एक बार ही कुछ हुआ, दो बार कुछ हुआ, लेकिन आगे हम उस चीज को इम्प्रूव करते जाएं। ये सब चीजें आप लोगों के साथ मैंने जो नॉर्मल एग्जांपल्स दिए ये सब आप एग्जांपल्स लोगों के साथ आराम से शेयर कर सकते हैं, तो लाइट मोड में आराम से ये सेशन हो सकता है। थैंक यू, ओम शांति। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आपने नोट किया होगा कि एक तो हमने इसमें स्टोरीज को कवर किया, दो तीन कहानियां कुछ ले ली, कुछ आप अपने लाइव स्टोरीज हो आप उसको वो ले सकते हैं, वीडियो भी ले लिया, एक्टिविटी भी ले लिया, तो अब कोई बोर होने का मार्जिन नॉन बीकेएस के लिए ज्यादा बचता नहीं। बीकेएस फिर भी हो सकते हैं क्योंकि हम बहुत सुनते हैं, फैक्ट है ये, हम लोग बहुत सुनते हैं तो एक मार्जिन हो सकता है, बट नॉन बीकेएस को आप इतनी एक्टिविटी अगर दे देंगे तो कोई मार्जिन नहीं बचेगा, वो एक घंटे बाद आपको अप्रिशिएट ना करे। थैंक यू, ओम शांति।